हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दूसरी तरफ, रवि का अपार्टमेंट। उस लड़की के कमरे के बाहर टहलता हुआ रवि कॉल पर आदित्य से बात कर रहा था। उसने कहा, सर, वो लड़की एक तरह से सच बोल रही है। उसका नाम रश्मि ही है और उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, मतलब उसके पेरेंट्स और घर वाले, मैंने सब कुछ पता किया। वो सच में अनाथ आश्रम में ही पली बढ़ी है। और रही बात उसके बॉयफ्रेंड की, तो उस बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि वो जिसका नाम ले रही है वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन का लड़का है और उसके भी होटल इंडस्ट्रीज़ हैं। अभी जो नई होटल इंडस्ट्रीज़ आई हैं आपकी कंपनी के कॉम्पिटिशन में, उनका ही बेटा है वो। लेकिन इन दोनों के साथ में होने के ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे इस लड़की पर थोड़ा शक हो रहा है। रवि कॉल पर ये सब कुछ बोल रहा था और दूसरी तरफ अपने विला के अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ आदित्य ये सब कुछ सुन रहा था। सुनैना इस वक्त वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो नीचे हॉल में पार्टी की तैयारी में लगी हुई है और उन दोनों को ही वहाँ से निकलना है, क्योंकि पार्टी वहाँ नहीं बल्कि उन दोनों के पुश्तैनी बंगले में रखी गई है जहाँ पर उन दोनों की शादी हुई थी। क्योंकि ये विला इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि यहाँ पर इतने लोगों को पार्टी में बुलाया जा सके। इसी बीच रवि का फ़ोन आ गया तो आदित्य उससे कॉल पर बात करने लगा। कॉल पर रवि की बात सुनकर आदित्य एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, अच्छा, शिवराज चौहान का बेटा, वो दक्ष चौहान, मैंने भी उसका सिर्फ नाम सुना है, लेकिन कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, वैसे भी वो सब आज की पार्टी में आ रहे हैं। आदित्य की ये बात सुनकर रवि अपने मुंह में ही बुदबुदाते हुए बोला, हाँ हाँ, सब आ रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं आ पा रहा हूँ सर। इस पर आदित्य ने कहा, अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम भी आ जाओ ना, मैंने तुम्हें कब मना किया है। तो रवि ने उसकी बात पर कहा, सर, लेकिन वो लड़की, उसे मैं अकेले छोड़कर कैसे आ सकता हूँ, वैसे भी अभी उस पर काफ़ी शक है मुझे। रवि काफ़ी सीरियस होते हुए बोला तो आदित्य ने कहा, एक काम करो, तुम उसे भी ले आना, उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो और फिर उसे भी अपने साथ पार्टी में ले आना, लेकिन बस थोड़ा सा लेट आना तुम, 9 बजे के बाद, जब सारे लोग आ जाएं तब। आदित्य उसे समझाने लगा और तभी एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला तो आदित्य ने एकदम ही अपना फ़ोन कान से हटाकर हाथ में पकड़ लिया और सुनैना ने उसे इस तरह अचानक से चुप होता देखकर घूरते हुए उसकी तरफ देखा। आदित्य समझ गया कि उसके इस तरह अचानक से मोबाइल फ़ोन पर बात करना बंद करने की वजह से ही सुनैना इस तरह उसकी तरफ देख रही है, इसलिए आदित्य सुनैना की तरफ देखकर हल्की स्माइल करते हुए बोला, अरे सोना, तुम क्या हुआ, सारी तैयारी हो गई क्या पार्टी की। सुनैना उसी तरह से शक भरी नज़रों से आदित्य की तरफ देखते हुए आगे आई और बोली, हाँ, मेरी तरफ से तो पार्टी की तैयारी चल ही रही है, लेकिन तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ऐसे चुपके चुपके किससे बात कर रहे थे। सुनैना की ऐसी शक भरी नज़र अपने ऊपर देखकर आदित्य ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, ये बीवियों की ना शक करने वाली आदत ना कभी नहीं जाएगी, चाहे जितना बोल दो कि बहुत प्यार करती हो, बहुत भरोसा है, लेकिन फिर भी शक तुम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। अरे नहीं, मैं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक नहीं कर रही, लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे छुपाकर कुछ उल्टा सीधा काम और ना करो जो मैं तुम्हें मना करती हूँ, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे सामने भी बात करो ना, किससे बात कर रहे थे, सुनैना ने उसकी बात का जवाब दिया। आदित्य कुछ नहीं बोला। अरे मैं कोई शक नहीं कर रही, मुझे पता है तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, सुनैना ने बहुत ही लापरवाही से कहा और इतना बोलकर वो वहां से अलमारी की तरफ बढ़ गई। तभी आदित्य ने कहा, हाँ, रवि से बात कर रहा था और वैसे भी बात खत्म हो गई, बस इसलिए ही फ़ोन रख दिया, ना यकीन हो तो फ़ोन चेक कर लेना। इतना बोलते हुए वो अपना फ़ोन वहीं बैठकर फेंक कर वहाँ से बाहर निकल गया। उसके इस तरह से जाने पर सुनैना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि आदित्य इतनी सी बातों में उससे नाराज़ तो नहीं होता है और फिर उसने भी ये बात कोई इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं बोली थी, इसलिए सामने बेड पर पड़े हुए आदित्य के फ़ोन की तरफ उसने एक बार देखा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। आदित्य वहां दरवाजे पर रुककर ये सब कुछ देख रहा था। उसे पता था कि सुनैना उसका फ़ोन चेक नहीं करने वाली और वैसे भी आखिरी कॉल रवि की थी, तो उसे इतनी कोई फिक्र नहीं थी, अगर सुनैना चेक करती भी तो उसे रवि का ही नाम दिखता। साथ ही उसे अच्छी तरह से पता है कि सुनैना उस पर बहुत भरोसा करती है, वो सिर्फ ऐसा बोलती नहीं है बल्कि सच में। ये सोचकर आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर उसके दिमाग में जैसे ही उस लड़की वाली बात आई जो अभी तक उसने सुनैना को नहीं बताया है, ये बात दिमाग में आते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई और उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, ये बात छुपाकर मैं सच में सुनैना का भरोसा तोड़ रहा हूँ क्या, वो मुझे पर सच में इतना भरोसा करती है और मैं हूँ कि क्या मुझे सच में इसे बता देना चाहिए। इतना बोलते हुए आदित्य ने फिर से दरवाजे से अंदर झांककर वहां बैठी हुई सुनैना की तरफ देखा, जो कि कपड़े तय करती हुई वहां बेड पर ही बैठी है और वो सारे कपड़े एक बैग में पैक कर रही है, अपने और आदित्य के भी। शायद शाम को पार्टी में पहनने वाले कपड़े हैं जो कि उन लोगों को वहां पर जाकर ही चेंज करने हैं। और वो काफी खुश और एक्साइटेड भी लग रही है, क्योंकि इसकी शादी के बाद से पहले ही कोई बड़ा फंक्शन या पार्टी हो रही है। उसे इस तरह से कुछ देखकर आदित्य ने अपने आप से बात करते हुए कहा, नहीं, ये कोई तो ओके वाली बात नहीं है। वैसे भी मैं सिर्फ उस लड़की की मदद ही तो कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और रवि को तुम्हें वैसे भी सब बता दिया है, और सुनैना की ये खुशी मैं टेंशन में नहीं बदल सकता उसे ये सारी बातें बताकर। वैसे भी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर ऐसा ही है तो मैं पार्टी के बाद उसे सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तब तक उसे मैं ये टाइम एंजॉय करने देता हूँ। वैसे भी इतनी सारी चीज होती रहती है हमारी लाइफ में, ऐसे खुशियों के मौके बहुत कम ही मिलते हैं। आदित्य ने खुद से इतना कहा और फिर कुछ देर बाद वो कमरे के अंदर आ गया। उसे कमरे के अंदर आते देख सुनैना तुरंत ही पीछे से जाकर उसके गले लग गई और उसे कसकर बैक हक करते हुए बोली, कहाँ चले गए थे तुम आदि? इस तरह से नाराज मत हुआ करो छोटी छोटी सी बात पर, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। और तुम जरूर कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे मेरे लिए, इसीलिए मुझे नहीं बताया है ना? आदित्य के इस तरह से पीछे से गले लगे हुए उसकी पीठ से अपना सर टिक कर सुनैना ने काफी उम्मीद से बोला, और साथ ही वो बात भी खत्म करना चाहती है जबकि आदित्य नाराज नहीं है। उसने सुनैना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, और रही बात सरप्राइज की तो वो सरप्राइज ही रहना चाहिए ना। लेकिन तुम तो इतनी स्मार्ट हो, तुमसे चुप कर तो मैं कुछ भी प्लान नहीं कर सकता, सब पता चल जाता है तुम्हें। उसे अपने सामने ही खींच लिया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरता हुआ उसकी आंख में देखकर बोला, डोंट वरी सोना, मैं कभी तुमसे नाराज हो सकता हूँ क्या? आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना हल्का सा मुस्कुराई, और तभी आदित्य अपना चेहरा उसके चेहरे की नजदीक लाने लगा। और सुनैना ने पहले तो अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एकदम से ही उसे टाइम और बाकी सारी चीजें रियलाइज हुई, तो वो आदित्य को पीछे पुश करती हुई बोली, नहीं, अभी टाइम नहीं है रोमांस का, चलो हमें अभी पुराने वाले घर चलना है।
इतना बोलते हुए सुनैना ने अपना हाथ आदित्य के हाथ से छुड़ाया और वहां से आगे बढ़ गई। उसकी बात पर आदित्य ने पीछे से अपने बालों में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, और फिर कुछ भी देर में वो दोनों ही वहां से निकल गए। स्वीटी उनके साथ नहीं है क्योंकि आज भी उसका कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन अपने इंस्टीट्यूट गई हुई है। और आदित्य सुनैना ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि पार्टी के टाइम से पहले तो वो आ ही जाएगी, इसलिए आदित्य सुनैना ने गीता दी को वहीं रुकने के लिए बोला है, और फिर वो दोनों ही ड्राइवर के साथ वहां से पुश्तैनी बंगले आ जाएंगी। दूसरी तरफ अनय मनस्वी का घर। अनय को समझ नहीं आता कि जब भी उन दोनों के बीच ऐसी कोई बात होती है, उसके बाद से चीजें उनके बीच इतनी ज्यादा ऑकवर्ड क्यों हो जाती है कि वो मनस्वी को ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता, जबकि मनस्वी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके सामने बैठकर कॉल पर बात करते हुए अनय को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अनय को अब तक उसके इस तरह से देखने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो भी अब उसे पसंद करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस तरह सामने से अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं पाता, जबकि मनस्वी उसकी वाइफ है और वो दोनों इतने टाइम से एक साथ भी रहते हैं। कॉल पर बात खत्म करके अनय ने फोन साइड में रखा और वहां से उठकर खड़ा हुआ, तभी पीछे से मनस्वी ने बोला, किसका फोन था और कहाँ जा रहे हो तुम? जब इतना सुन लिया तो ये भी पता चली गया होगा कि कहाँ जा रहा हूँ, इस तरह से पूछ क्यों रही हो फिर? अनय ने बहुत ही बेरुखी से उसकी बात का जवाब दिया तो मनस्वी का मुंह बन गया और उसने कहा, पता होता तो क्यों पूछती मैं फिर तुमसे, बस इतना ही समझ आया कि किसी का इन्विटेशन कॉल था, अब किसका ये कैसे पता चलेगा मुझे जब तक तुम नहीं बताओगे। इतना बोलते हुए मनस्वी उठकर उसकी तरफ आई और उसने अनय का हाथ पकड़ लिया। अनय ने उसकी तरफ एक नज़र देखा और फिर बोला, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कि बता दूंगी तो फिर साथ चलोगी? तुम साथ ले चलोगी तो जरूर चलूंगी, मनस्वी ने तुरंत ही उसकी बात पर बोला। अनय उसकी बात काटते हुए बोला, अच्छा, बिना जाने ये बात बोल दिया, पहले सुन तो लो कहाँ चलना है। मनस्वी ने उसका हाथ और कसकर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जगह से, जब तक तुम साथ हो मैं कहीं भी जा सकती हूँ तुम्हारे साथ, और वैसे भी पहली बार ही हम कहीं इस तरह से साथ में जाएंगे ना। मनस्वी की ये बात सुनकर अनय कुछ पल के लिए उसकी तरफ ही देखने लगा, क्योंकि ये बात बोलते हुए उसकी आंखों में मजबूती नजर आ रही है और साथ ही उसके लिए प्यार भी। अनय ने एकदम से बोला, आदित्य के घर जाना है हमें, उसकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी का इन्विटेशन है और आदित्य का ही कॉल था, बताओ चलोगी? आदित्य का नाम सुनकर मनस्वी के चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज हुए और वो थोड़ा सोच में पड़ गई। क्रमशः